पृष्ठ संख्या एक, चंद बरदाई, सन 1126 से 1196 ईस्वी। चंद बरदाई हिंदी के ऐसे प्रारंभिक कवियों में हैं जिनके काव्य में हिंदी कविता की धमक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में उन्हें हिंदी का पहला महाकवि के पद गौरव से अलंकृत करते हुए लिखा कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में आए विवरणों से पता चलता है कि ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र कुल में उत्पन्न हुए थे। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। चंद के जन्म काल के संदर्भ में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। पृथ्वीराज दासों में भी इस संदर्भ में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। कुछ एक स्थलों पर संकेत में ही थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि चंद और पृथ्वी का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। चंद बरदाई एक सिद्धहस्त कवि थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पंडित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम नामक एक भाट से प्राप्त हुआ था जो अपने को चंद का वंशज मानता था। उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद के चार पुत्र थे जिनमें चौथा पुत्र जल्ल सबसे छोटा था। जिस समय पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी कैद कर गजनी ले गया उस समय चंद भी उनके साथ गया। उस समय तक पृथ्वीराज रासो की रचना अधूरी थी। चलते समय चंद ने अपने काव्य प्रतिभा से संपन्न पुत्र जल्ल ब्रैकेट में जल्लड़ को पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जल्लड़ हत्थ दय चल गजन नृप काज। कहा यह भी जाता है कि अपने कवि पिता की इच्छा अनुसार उसके योग्य पुत्र जल्ल ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य को पूर्ण किया और चंद के यश को अमर कर दिया। जैसे कादंबरी के उत्तरार्ध भाग को लिखकर बाण के पुत्र ने पूर्ण किया था, वैसे ही जल्लड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुमान किया है। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह ने अनुमान किया है कि चंदकृत पृष्ठ संख्या 2 रासो संयोगिता स्वयंवर के बाद ही समाप्त हो जाता है। जो भी हो, वर्तमान में यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही रूपों में हमारे सामने उपलब्ध है। चंद बरदाई हिंदी के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मंत्री, मित्र और राजकवि थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर राजा इन्हें सखा तुल्य सम्मान देता था। चंद भी परम स्वामी भक्ति था और अपने राजा पृथ्वीराज के सुख दुख का सहचर भी। भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, पुराण, नाटक, ज्योतिष तथा छंद शास्त्र आदि विधाओं में पारंगत होने के कारण चंद का सभी सम्मान करते थे। वह एक निराभिमानी कवि और स्वामी भक्ति सेवक था। दोनों चंद और पृथ्वी के जन्म मरण का संयोग भी साथ ही साथ हुआ। इतिहास में यह अपने किस्म की अनोखी घटना है। गजनी में रहते हुए एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मार दिया। परिणामतः शत्रु के सैनिकों के हाथों पकड़े जाने और मारे जाने के भय से चंद और पृथ्वी ने एक दूसरे को कटार भोंक दिया और शान से शहीद हो गए। रासो की लगभग सभी प्रतियों में इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह अलग बात है कि ऐतिहासिक साक्ष्य इस घटना पर मौन है। पृथ्वीराज रासो और उसकी प्रामाणिकता। चंद बरदाई ब्रैकेट में चंद बलद्दीय ब्रैकेट बंद की उपलब्ध एकमात्र कृति पृथ्वीराज रासो है जिसमें कुल 69 समय या सर्ग हैं। यह हिंदी का पहला महाकाव्य है और लगभग 2500 पृष्ठ में लिखा गया हिंदी का अब तक का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। विविध वर्णन के प्रकार, प्रसंगों, मनोरम सौंदर्य वर्णनों रसों, छंदों, अलंकारों आदि सभी प्रकार के काव्य गुणों से युक्त होने पर भी इस ग्रंथ को प्रामाणिकता विवाद के कारण हिंदी में अभी तक वह सम्मान नहीं मिल पाया है जिसका वह अधिकारी है। पृथ्वीराज रासो के अब तक 4 संस्करण प्रकाश में आए हैं। प्रथम काशी नागरी प्रजारणी से प्रकाशित है, जो सबसे बड़ा संस्करण है और जिसमें कुल 16,306 छंद हैं। इसकी दूसरी प्रति बीकानेर से मिली है, जिसमें 7,000 छंद हैं। तीसरी प्रति भी बीकानेर से ही प्राप्त हुई है, जिसमें मात्र 3,500 छंद हैं। जबकि चौथा इसका सबसे छोटा संस्करण मिला है, जिसमें केवल 1,300 छंद हैं। इसमें काशी नागरी प्रचारली वाली प्रति को छोड़कर शेष कोई भी संस्करण प्रकाशित नहीं है। बीकानेर के संग्रहालय में इनकी प्रतियां अवश्य सुरक्षित हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह ने जिस संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है, उसमें केवल 8 समय ब्रैकेट में सर्ग हैं। रासो के उक्त संस्करण स्वयं ही उसके विरोध में संशय खड़ा कर देते हैं। इस संदर्भ में विद्वानों में 3 प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं। विद्वानों का एक वर्ग पृष्ठ संख्या 3, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदरदास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिस्टर बंधु और कर्नल टार्ड आदि आते हैं, ये नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित संस्करण को ही प्रामाणिक मानते हैं। जबकि दूसरा वर्ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराजा, श्यामल दान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर महोदय तथा मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान इस ग्रंथ को अप्रामाणिक घोषित करते हैं। विद्वानों का एक तीसरा वर्ग भी है, जिसमें मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि आते हैं, जो मानते हैं कि चंद ही पृथ्वीराज रासो का रचयिता था, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। कर्नल टार्ड ने इसके सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। सन 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस ग्रंथ का मुद्रण आरंभ किया, उसी समय डॉक्टर बूलर महोदय को जयानक भट्ट रचित पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ घोषित किया। इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों और शोधकर्ताओं ने जो तर्क दिए हैं वे इस प्रकार हैं। का रासो की अप्रामाणिकता के तर्क। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराजा, श्यामल दान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा मुंशी देवी प्रसाद एवं बूलर आदि विद्वान जो इसे अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ मानते हैं, वह इसके पीछे निम्नलिखित तर्क देते हैं। एक, यह कि पृथ्वीराज के दरबार में पृथ्वी नामक एक भाट कवि था। कवि चंदबरदाई का कहीं भी इतिहास ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। दो, आचार्य शुक्ल ने किसी अन्य कवि की संभावना भी व्यक्त की है जिसने पृथ्वीराज के चरित्र पर कोई कल्पित ग्रंथ लिखा था, जिसका वर्तमान रूप उसी के वंशजों के प्रक्षेप का परिणाम है। तीन, यह कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं, पात्र और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खातीं, जबकि यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। चार, छंद भिन्नता के अतिरिक्त भाषा और व्याकरण की एक रूपता भी इसमें नहीं है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के साथ ही साथ ब्रजभाषा की मंजी हुई शैली के उदाहरण भी इसमें देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में लगभग 300 वर्ष का वृहत इतिहास समाहित है। इसकी रचना में बाद के अनेक चारण या भाट कवियों का योगदान है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे भट्ट भड्डंत कहा है। पृष्ठ संख्या 4, खा रासो के प्रामाणिकता के तर्क। डॉक्टर श्याम सुंदरदास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कर्नल टांड, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वान का एक दूसरा वर्ग भी है, जो इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानता है और इसके पीछे कतिपय तर्क देता है। एक, डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं उसमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। दो, यह कि रासो की घटनाओं की इतिहास की घटनाओं से तुलना करने पर 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है वह संवत की भिन्नता के कारण है। श्री पंड्या ने एक आनंद संवत की कल्पना कर इन तिथियों को ऐतिहासिक करार दिया है। 3. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत की प्रवृत्तियां मिलती हैं, जिससे भाषा के आधार पर यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। 4. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मत यह भी है कि इस ग्रंथ की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती केवल उन्हें ही प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए। 5. जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों के बहुतायत प्रयोग के कारण उसे जाली ग्रंथ कहा है, उसके उत्तर में यह कहा गया है कि चंद लाहौर का निवासी था, अतः मुसलमानों के संपर्क में आने के कारण उसके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाना स्वाभाविक ही है। 6. इसके अतिरिक्त यह कि रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर एक काव्य ग्रंथ है, अतः केवल ऐतिहासिक सत्य के आधार पर इसे अप्रामाणिक कहना असंगत है। अस्तु, यदि उक्त विद्वानों के अप्रामाणिक के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो ही नहीं बल्कि कबीर के बीजक, जायसी के पद्मावत, सूर के सुरसागर, तुलसी के रामचरितमानस आदि की प्रामाणिकता पर भी संदेह किया जा सकता है। अतः केवल प्रक्षिप्तांशों या इतिहास अनुमोदित तथ्यों के आधार पर किसी काव्य रचना को अप्रामाणिक कह देना तार्किक रूप से अनुचित और असंगत लगता है। पृष्ठ संख्या 5. पृथ्वीराज रासो और शशिव्रता विवाह ब्रैकेट में समय। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और घटना प्रसंगों पर आधारित एक वृहत चरित काव्य है। महाकवि चंद ने जिसे रासक शैली में रचा है। आधिकारिक मूल कथा के साथ ही साथ कवि ने अनेक कथा प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता के साथ इसमें समाहित किया है। नृपति पृथ्वीराज के जन्म, विवाह तथा युद्धादि जीवन की क्रमिक घटनाओं को अनेक आनुषंगिक प्रसंगों के साथ गूंथा गया है। इसकी मुख्य घटनाओं में पृथ्वीराज का चाहमान ब्रैकेट में चौहान वंश में जन्म, विद्याभ्यास, चालुक्य भीमदेव के भ्राता का वध, भीमदेव की पृथ्वीराज से शत्रुता, इच्छिनी विवाह प्रसंग, हंस द्वारा शशव्रता के गुणों का वर्णन सुनकर उस पर पृथ्वीराज की अनुरक्ति, जयचंद द्वारा शशव्रता का हरण, पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पराजय और विवाह, मंत्री कैमास ब्रैकेट में कैमास या कदंबवास का वध, संयोगिता स्वयंवर, ऋतुवर्णन, संयोगिता पृथ्वीराज विवाह, रानियों में सौतिया डाह, शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का आक्रमण, पृथ्वीराज और गोरी का युद्ध, पृथ्वीराज की पराजय और गजनी में कैद कर उसकी आंखें फोड़ना, संयोगिता आदि रानियों का सती हो जाना, कवि चंद का गजनी में पृथ्वीराज से मिलना तथा चंद के इशारे पर शब्द वेधी बाण द्वारा गोरी का वध करना और अंत में एक दूसरे को कटार मार के मर जाना पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की मुख्य घटनाएं हैं। संपूर्ण कथा चंदकृत नहीं है, वह केवल कथा के पूर्वार्ध का ही रचयिता है। कथा का उत्तरार्ध उसके पुत्र जल्लड़ द्वारा रचा गया माना जाता है। इसकी कथा सृष्टि में इतिहास और कल्पना दोनों से काम लिया गया है। पृथ्वीराज रासो का कथा फलक 69 समय या सर्गों में फैले होने के बावजूद सुगठित है। इसमें आए प्रकृति वर्णन, चरित्र चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण, युद्धों का चित्रण आदि बड़े ही मार्मिक बन पड़े हैं। पृथ्वीराज रासो का मुख्य या प्रधान रस वीर रस है। अन्य रसों की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कवित्त या छप्पय, दुहा, त्रोटक, गाहा, आर्या, अरिल्य, पद्धरी, साटक, भुजंग प्रयात, तोमर आदि 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। चंद ने सबसे अधिक छप्पयों का प्रयोग किया है, इसीलिए शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पयों का राजा कहा है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, कवि चंद ने इसमें शब्दा और अर्था दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति मुख्य हैं, तो अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि का प्रयोग अधिक है। भाषा पर भी चंद का असाधारण अधिकार था। इसीलिए अपने संपूर्ण शिल्प सौंदर्य में रासो आदिकालीन ग्रंथों में एक अनूठा ग्रंथ बन पड़ा है। पृष्ठ संख्या 6। यद्यपि कि इसके अनुस्वारिक प्रयोग को आचार्य शुक्ल ने अच्छा नहीं माना है, किंतु उससे कवि का अपनापन प्रकट हुआ है। रासों की भाषा और छंद प्रसंगानुसार होते हैं। इसकी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी पंजाबी, अवधी, ब्रज, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का कुशलता से प्रयोग हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि इन्वर्टेड कामा रासों के कवि की अभिव्यक्ति क्षमता सबसे अधिक भाषा पर अधिकार के रूप में देखी जाती है। कवि जैसा चाहता है शब्दों का प्रवाह मोड़ देता है, हर शब्द जैसे उसके इशारे पर नाचता चलता है। इन्वर्टेड कामा बंद। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने इसकी भाषा को डिंगल या अपभ्रंश न मानकर पिंगल ब्रजभाषा माना है, तो इतिहासकार तेसी तोरी या ग्रियर्सन ने इसे पश्चिमी ब्रज की रचना बताया है। इसके विपरीत डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसकी भाषा को राजस्थानी कहा है। चंद ने स्वयं अपने को शठ भाषा का जानकार बताया है, तथापि इसमें डिंगल पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। शशव्रता विवाह प्रसंग इस मूल ग्रंथ के 23वें समय या सर्ग में आया हुआ प्रसंग है। यद्यपि कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों में यह 5वें अध्याय के रूप में आया है। पृथ्वीराज ने अपने जीवन में अनेक विवाह किए, जिनमें इच्छिनी, शशव्रता और संयोगिता विवाह मुख्य हैं। प्रसंग का आरंभ कवि ने शुक-शुकी संवाद के रूप में कराया है। इसमें शशव्रता के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का सारा वृत्तांत शुक-शुकी को सुनाता है। कथा का सारांश यह है कि देवाम ब्रैकेट में देवगिरि के राजा भानु के भाई पुंज की कन्या शशव्रता के विवाह योग्य होने पर वह राजपुरोहित को नारियल देकर कन्नौज नरेश जयचंद के पास भेजते हैं, ताकि जयचंद के भाई कमधज बीरचंद के साथ उसका विवाह हो सके। राजपुरोहित ने जब देवास पहुंचकर विवाह का वह नारियल अर्पित किया, तब वहां उपस्थित एक गंधर्व, जिसे इंद्र ने शशव्रता ब्रैकेट में पूर्व जन्म की चित्ररेखा अप्सरा की देखरेख के लिए नियुक्त किया था, वह सुनहले हंस का रूप धारण कर शशव्रता के समक्ष चौहान नरेश पृथ्वीराज को उसके लिए योग्य वर बताता है, तथा उस रूप गर्विता की पिछले जन्म की कथा भी सुनाता है। हंस के मुख से पृथ्वीराज के वीरत्व और रूप यौवन की बातें सुनकर वह मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगती है, तथा हंस से याचना करती है कि दिल्ली जाकर पृथ्वीराज के मन में भी उसके लिए अनुराग प्रकट करें। दिल्ली पहुंचकर जब हंस पृथ्वीराज से शशव्रता का रूप वर्णन करता है, तो पृथ्वी के मन में भी उसके प्रति पूर्वानुराग हो जाता है। फलतः पृथ्वीराज उसे पाने के लिए पृष्ठ संख्या 7 चुनिंदा सामंतों, सरदारों और सैनिकों के साथ देवास की ओर कूच करता है। उधर जयचंद का भाई कमधज वीरचंद भी लगभग 1,10,000 सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। राजकुमारी शशव्रता इस स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या करना चाहती है कि तभी हंस रूपी गंधर्व उसे पृथ्वीराज के भी आने की सूचना देता है। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। रात्रि में जब शत्रु घात लगाकर पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर देते हैं, तब मंत्रियों की सलाह पर वह संयोगिता को घोड़े पर बैठाकर दिल्ली की ओर कूच करता है। रास्ते में पीछा करती हुई वीरचंद की सेना उसे घेर लेती है, किंतु पृथ्वीराज अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए शशव्रता को सुरक्षित लेकर निकल जाता है। उसके बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध समाप्त हो जाता है। दिल्ली पहुंचने पर पृथ्वीराज और शशव्रता के स्वागत के लिए नगर भर को सजा दिया जाता है। दोनों आनंदपूर्वक रहने लगते हैं और इसी के साथ ही यह प्रसंग समाप्त हो जाता है। कथा विन्यास, इतिहास और कल्पना, पात्र एवं चरित्र योजना, घटनाक्रमों का विधान, श्रृंगार एवं शशव्रता का सौंदर्य वर्णन, पृथ्वीराज का वीरत्व वर्णन, युद्ध वर्णन, भाषा छंद, रस परिपाक आदि सभी दृष्टियों से यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इसमें प्रकृति चित्रण के भी कई दृश्य बड़े ही अनूठे रूप में आए हैं। वराह संधि के पश्चात शशिव्रता में हुए यौनागमन को वसंत से उपमित करते हुए कवि कहता है, पत्त पुरातन झरिग पत्त अंकुरिय उठ तुझ, ज्यों सैसो उतरिय चढ़िय वैसव किशोर कुछ, शीतल मंद सुगंध आए रीतिराग अचानंग, रोमराई संग कुछ नितंब तुच्छं सरसानम। वास्तव में पृथ्वीराज रासो आदिकालीन राजाओं के विलास पंख में डूबे रासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर विरोधों को चित्रित करने वाला महाकाव्य है। यह कबीर, जायसी, तुलसी, सूर आदि संत भक्तों की तरह जनसमूह की आशाओं आकांक्षाओं को द्योतित करने वाला काव्य नहीं है। यद्यपि चंद ने अपने चरित्र नायक की दुर्बलताओं को छिपाने का भरपूर प्रयास किया है, पर जाने अनजाने इसमें उस युग के समाज की कमजोरियां स्वतः ही उभर आई हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो अपने रचना विधान में अपने समय की सच्चाइयों को समूर्तित करने वाला हिंदी का पहला महाकाव्य है।